नमस्कार दोस्तों, मोबाइल से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है पक्ष विपक्ष में घटती गरीबी और सरकारी डाटा की सच्चाई। पिछले 10 सालों में गेहूं की MSP में महज 800 रुपये की वृद्धि हुई है, वही धान में 823 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 23 फसलों पर MSP में शामिल किया गया है, जबकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है। यह हाल तब है जब महज कुछ किसानों को इसका लाभ मिल पाता है। और एक और बड़े आंकड़े जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से बयां करते हैं, 2013-14 में एक परिवार की मासिक आय 6,426 थी, वही 2018-19 में यह बढ़कर 10,218 रुपये है। इसके बावजूद भी सरकार ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया गया है। आज हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ से डॉक्टर शिवा श्रीवास्तव तय जुड़ी हुई। तय मोबाइल पर स्वागत करेंगे आपका।
नमस्ते योगेश जी, नमस्कार।
जी, तय घटती गरीबी और जो 18-19 के वास्तविक आंकड़े के सामने न लाना और जनता के सामने न रखना, कैसा देखते थे?
दरअसल सरकार हमेशा से ही अपनी वास्तविक स्थितियों को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ एक नई चीजें लाती रहती है। जैसे आपने बताया कि पहले जो है वो 6,875 रुपए जो आपने आंकड़े बताया उसके अनुसार, लेकिन उसके बाद से उन्होंने कोई आंकड़े नहीं दिए। जबकि अभी नीति आयोग ने कुछ दिनों पहले ही ये बताया कि देश की गरीबी का स्तर लगभग जो है 5% कम हो गया है, और उसमें आंकड़े नहीं दिए उन्होंने कि कितना कम हुआ है कि क्या है। मतलब कुल मिला के महागरीबी जिसको कहा जाता था वो सरकार की तरफ से सरकार के आंकड़ों में पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और अब हम गरीबी के ऊपरी स्तर पे हैं। मतलब जो विदेशों में जो एक स्तर होता है गरीबी को लेकर, वो उससे तुलना भारत की जाने लगी है। जबकि हम सब जानते हैं कि भारत में जो स्थितियां हैं, चाहे वो अभी हम देख ही रहे हैं किसान आंदोलन जिस तरह का हो रहा है पूरे देश भर में, और MSP को लेकर चाहे वो गेहूं की MSP हो, या तो वो वास्तविक स्थितियां छुपाकर, और ये बता दिया जाता है कि 3% गिरावट आई है। भाई गिरावट तो आई है, लेकिन आपके कहना चाहिए जेब जिनकी भारी हुई है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनकी सामान्य आय ही सामान्य नहीं है उनको क्या हम गड़बड़ बता सकते हैं। तो ये जो है आंकड़े आपके जो है वो जो भी बता रही है सरकार वो पूरी तरह से सही नहीं है,
जी
और मात्र ये कह देने से कि 5 गुना कम हुई है या 6 गुना कम हुई है इससे बात नहीं बनती है। असली मायने में अभी भी जो है स्थितियां सामान्य नहीं है।
इन आंकड़ों को छुपाना और जनता के सामने न लाना किस तरीके से
जी
लगता है, और लोकतंत्र में जो जनता के हितों के मुद्दे हैं वो अगर जनता के सामने ही ना आ पाए तो ऐसी परिस्थितियों को आप कैसे देखते हैं?
देखिए योगी जी, ये तो सरकार जो है ये जिस भी तरह के अगर ये कृत्य है कि सच्चाइयों को सामने नहीं लाने देना है और दूसरी चीजों में जनता को उलझाए रखना है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, अगर असली चीजों पे हम कहें कि हमारी जो आय है, जो एक मतलब कहना चाहिए कि गरीबी हटाने के लिए हम एक स्तर का जो पैमाना हमने नापा है, पैमाना जो हमने बनाया है, यदि उस स्तर पे हम नहीं आ पाए हैं और सिर्फ कह देने से या छुपाने भर से वो चीजें पूरी तो नहीं हो जाएंगी, कहीं ना कहीं छुपी तो है, तो इससे जनता पे तो बुरा असर हो ही रहा है। लेकिन इसमें बात समझने की थोड़ी जनता की भी गलती है कि जनता को ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर गवर्नमेंट हमसे ये छुपा रही है तो इसके पीछे इनकी मंशा क्या है। जैसे अभी मतलब जो है जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि आगे आने वाले फलाने साल तक हम जितने गरीब हैं उनको अनाज बांटे जाएंगे, अरे भाई अनाज बांटना इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो अनाज बांट देने से ना तो गरीबी कम हो रही है ना कुछ नहीं। आप मतलब ठीक है जो लोग नहीं अपना पेट भर सकते उनको देना इज ओके, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है ना। आप छुपा के कहीं ना कहीं जनता से धोखा तो कर ही रहे, तो ये अच्छा नहीं है, और आगे आने वाले समय के लिए तो मतलब इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए जनता को। और लेकिन इसमें बस एक ही चीज है कि जनता यदि अभी भी समझ जाए तो भी चीजें जो है वो सुधर सकती हैं, अदरवाइज क्या स्थितियां होने वाली हैं कोई नहीं जानता।
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की सप्त क्रांतियों में मजदूर से लेकर किसान से लेकर एक अगर कोई व्यापारी भी हो तो उसके बारे में बड़ा ही संक्षेप में और विस्तार से लिखा है, और आज वर्तमान परिवेश में कितना प्रासंगिक देखते हैं उनको।
राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति को तो जयप्रकाश नारायण ने भी अपनी संपूर्ण क्रांति बताया था। जब उन्होंने जयप्रकाश जी की सप्त क्रांति को लेकर, या उन्होंने जब अपना आंदोलन किया, तो उनकी क्रांतियों को लेकर, सात क्रांतियों को, जिसमें सारे भेदभाव मिटाने की बात है, चाहे वो अमीरी गरीबी की बात हो, या समान आय की बात हो, या कहना चाहिए कि स्त्री और पुरुष में समानता की बात हो, कोई किसी भी तरह की असमानता को हटाने के लिए राम मनोहर लोहिया ने सात क्रांतियां गिनी थी। आज के समय में वो उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि अगर हम असमानता ही नहीं मतलब पटा पाए, असमानता ही नहीं पाट पाए, तो कहीं ना कहीं हम आज भी अपनी मानसिक रूप से गुलामी में जी रहे हैं। क्योंकि हम अभी भी आय व्यय के मामले को, जो हम कहते हैं कि भाई प्रति व्यक्ति खर्चा जो है वो इतना होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि आप 25 रुपए या 30 रुपए ही दिन में खर्च कर सकते हो, जबकि दूसरे जो है वो लाखों रुपए एक दिन में खर्चा कर रहे थे। कि असमानता तो बहुत बड़ी असमानता है ना, खाई के बराबर असमानता है, जिसको पाटने में बहुत समय लग जाएगा। और अगर, अब मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि अगर लोहिया की ही बात करें, तो लोहिया ने अगर उस समय जो क्रांतियों की बात करी, अगर आज भी व्यक्ति ना समझे, तो अब इसके लिए तो और क्या किया जा सकता है। यही कह सकते हैं कि भाई आप जो है इन चीजों को देखें, सुने, पढ़ें, तभी आप अपना एक मानसिक स्तर जो है वो उच्च कर सकते हैं।
जी, राम मनोहर लोहिया जी की जो सप्त क्रांति है उसमें विदेशों में जिस तरीके से मजदूर काम करते हो, किसान काम करते हो, और भारत में किस तरीके से काम करते हैं, और जो परिस्थितियां दोनों का आकलन जिस तरीके से रखा है, क्या एक वर्तमान परिवेश में समानता लाने का पैमाना कैसे नजर कैसे देखते हो आप?
देखिए, विदेश नीति को लेकर, विदेश नीति नहीं कहना चाहिए, विदेशी, विदेश में जिस तरह से जो आय व्यय के रूप में एक समानता कह लें, या वहां पे ज्यादा पैसा दिया जाता है लेबर को काम करने के लिए। हमारे यहाँ जितना ज्यादा लेबर होगा उतना पैसा कम होता चला जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि आसानी से उपलब्धता है, तो इस वजह से जो है वो चीजें जो है वो हम बहुत हल्के में लेने लगते हैं कि नहीं यार, हमारे यहाँ तो मजदूर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग तो उनसे काम करवाए जा सकते हैं। जबकि विदेशों में वही चीज बहुत मतलब लोग भी हैं, लेकिन उतने ही स्टैंडर्ड पे हमको कम मिल पाती हैं। तो आज के समय में हमको ये देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे, जैसे 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 हम चाहे सरकारी योजनाओं के चलते देखें या कुछ भी देखें, मजदूरों में कमी आई है। मतलब मजदूर कह लें या कह लें कि जो काम करने वाले जो लोग हैं वो आसानी से मिलना बंद हो गए हैं। तो अब वो स्थितियां विदेशों जैसी पैदा तो होने लगी हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये कहना चाहिए कि भारत में और विदेशों में बहुत फर्क है, कि वहां चीजें जो है वो बहुत महंगी दरों पर खरीदी जाती है, या अच्छा दाम उनको वहां मिलता है काम करने का, जबकि भारत में वो स्थितियां नहीं है। ये एक बड़ा अंतर है। तो मेरा कहना ये है कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो अपनी सप्त क्रांति में जो बात कही है, या दोनों जगह की असमानताओं की जहाँ बात की है, तो वो आज भी वैसी ही देखने को मिल रही है। अगर हम मतलब भारत की बात करें, तो देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे ये अनाज दिया जा रहा है गरीबों को या कुछ, तो लेबर जो है वो मिलना बंद हो गई है। हमने देखा होगा कि हम अपने घरों में काम करवाने के लिए लेबर नहीं मिल पा रही। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि आज यदि ये स्थिति है, तो आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी, इसको समझने की आवश्यकता है।
जी, देश के युवाओं में कृषि के प्रति जो लगाव है वह कम होता जा रहा है, क्या कारण देखते हैं? और साथ में राम मनोहर लोहिया जी की जो सप्त क्रांति को अगर धरातल पर उतारे तो युवाओं को कृषि को लेकर कितना योगदान दे सकते हैं, कितना सुधार आ सकता है?
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक पुस्तक है विद्यार्थी और राजनीति करके, तो उसमें देखा जाए तो कृषि को लेकर जो मतलब उसमें भले कृषि को सीधे सीधे नहीं मतलब डिस्कस किया गया है, लेकिन जो आपका प्रश्न है उसको मैं जोड़ते हुए बता रही हूँ कि उनकी जो पुस्तक है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि एक विद्यार्थी का राजनीति के उसमें कितना मतलब प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, समझ सकते हैं, ठीक ढंग से एनालिसिस कर सकते हैं किसी चीज का। यदि हम आज के समय में कृषि की बात करें, तो कृषि में रुचि इसलिए नहीं है कि उनको लगता है कि अरे मेहनत ज्यादा है और आउटपुट उतना कम मतलब मिल पाता है। तो हम क्यों ना ऐसे मशीनों के काम करें जिससे हमको मतलब समय कम लगे लेकिन आउटपुट ज्यादा मिले। सोचना ठीक है, लेकिन यदि कृषि पूरी तरह छोड़ दी जाएगी तो फिर तो कहते भी है कि भारत तो कृषि का ही देश है, तो यदि अगर इसको इस तरह से छोड़ दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगी। लेकिन विद्यार्थियों को कृषि की तरफ नई टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ना चाहिए। मतलब अगर डॉक्टर लोहिया आज होते तो शायद वो ये इस बात को थोड़ा और मॉडिफाइड करके कहते कि विद्यार्थियों को हमेशा जो है कृषि से जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि हाथ के काम तो वो हमेशा से ही प्रमोट करते रहे। और कृषि के कामों में यदि हम उपकरणों का उपयोग करेंगे तो हमको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि नई तकनीकी अपनाने में कभी गुरेज नहीं करना चाहिए, है ना। तो
तो ये थी
कृषि जी
डॉक्टर की बात आई जिन्होंने मोबाइल वाणी पर घटते गरीबी और सरकारी आंकड़ों की सच्चाई इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया मोबाइल वाणी पर साझा की। की बात आई, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई
धन्यवाद योगेश,
जी। मोबाइल
धन्यवाद।
वाणी से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।